नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी अब औपचारिक रूप से मंदी की गिरफ्त में आ गई है। नए आंकड़ों से पता चलता है कि चालू साल की पहली तिमाही में जर्मनी की अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित गिरावट आई है। संघीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा बृहस्पतिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी मार्च में जर्मनी के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 0.3% की गिरावट आई। 2022 की आखिरी तिमाही में भी जर्मनी के GDP में 0.5% की गिरावट आई। दो लगातार तिमाहियों में GDP का नीचे आना तकनीकी रूप से मंदी में आता है। ये आंकड़े जर्मनी की सरकार के लिए बड़ा झटका है। पिछले महीने ही सरकार ने इस साल के लिए अपने वृद्धि दर के अनुमान को दोगुना कर दिया था। सरकार ने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था 0.4% की दर से बढ़ेगी। जनवरी में इसके 0.2% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ऊंची मुद्रास्फीति से उपभोक्ता खर्च प्रभावित हुआ है। अप्रैल में कीमतें एक साल पहले की तुलना में 7.2% ऊंची हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर 22 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। अमेरिका भारत रणनीतिक एवं भागीदारी मंच USISPF के अध्यक्ष मुकेश अघी ने कहा कि मोदी की ये यात्रा इस बात का संदेश है कि दोनों देश भू राजनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जून में राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति और जिल बाइडेन 22 जून को राजकीय रात्रि भोज में मोदी की मेजबानी करेंगे। अघी ने PTI भाषा से साक्षात्कार में कहा, ये बाकी दुनिया के लिए एक संदेश है कि भारत की विकास की कहानी वास्तविक है। भारत एक उभरती ताकत है। भारत एक दिन बड़ी ताकत बनेगा और दुनिया को भारत को और अधिक गंभीरता से लेना होगा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये एक संदेश है कि दोनों देश भू राजनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं और एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अघी ने कहा, हम देख रहे हैं कि भारत मूल रूप से लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ अधिक जुड़ रहा है जो कानून के शासन पर केंद्रित हैं। वहीं दूसरी ओर रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया का अपना स्वयं का ब्लॉक है। उन्होंने कहा, एक संदेश है कि भारत का समय आ गया है। भारत अहम भूमिका निभाएगा और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसे प्रदर्शित करने का शानदार काम किया है। बायर क्रॉप साइंस का बीते वित्त वर्ष 2022-23 की मार्च में समाप्त चौथी तिमाही का शुद्ध लाभ 3.79% बढ़कर 158.5 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 152.7 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय बढ़कर 982.5 करोड़ रुपए हो गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 63.3 करोड़ रुपए थी। तिमाही के दौरान कंपनी का खर्च भी 779.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 811.1 करोड़ रुपए हो गया। पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में बायो क्रॉप साइंस का शुद्ध लाभ 17.49% के उछाल से 758.2 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में 645.3 करोड़ रुपए था। बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बिजली परियोजना को समय पर पूरा नहीं करने वाले डेवलपर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। सिंह ने बृहस्पतिवार को भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी डेवलपर वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की तारीख या समय सीमा से चूकेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बोली प्रक्रिया के तहत जीती गई कई परियोजनाओं को डेवलपर पूरा नहीं कर रहे हैं। सिंह ने कहा कि इन सभी परियोजनाओं यानी बिजली परियोजनाओं को बोली प्रक्रिया के तहत जीता गया और अगर वे परिचालन के अनुसूचित वाणिज्यिक तिथि SCOD से चूकते हैं तो संबंधित डेवलपर को एक साल के लिए किसी परियोजना की बोली प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इसी तरह का दूसरा मामला होने पर डेवलपर को 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह इस नियम को नीति में शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली परियोजना का विकास करने वाले मांग बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सिंह ने यह भी कहा कि जब तक बैटरी ऊर्जा भंडारण व्यवहार्य नहीं हो जाता तब तक भारत को मांग को पूरा करने के लिए ताप बिजली क्षमता बढ़ानी होगी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।